अनु यार, सुन रही हो तुम? माधव जी कैसे बिहेव कर रहे हैं मेरे साथ? मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं प्रेग्नेंट नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा बीमार हूँ और डॉक्टर ने मुझे बेड रेस्ट की सज़ा सुनाई है। ज़रा सा काम किया था मैंने और वो मुझ पर ऐसे नाराज़ होने लगे जैसे पता नहीं कौन सा गुनाह कर दिया हो मैंने। पहले भी तो प्रेग्नेंट थी मैं, तब सब काम करती थी। प्रेग्नेंसी से मेरे रूटीन में रत्ती भर का अंतर नहीं आया था, जबकि तब तो मेरी तबीयत भी खराब रहती थी और यहाँ अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, फिर भी माधव जी ऐसे ट्रीट कर रहे हैं मुझे। कहते हैं आराम करो, जब थकी नहीं हूँ तो कैसे आराम करूँ? और अगर मैं सारा दिन पलंग पर पड़ी रहूँगी तो घर कौन देखेगा? राधिका अपना सारा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन फ़ोन पर निकाल रही थी। अंजलि और अहाना वीडियो कॉल पर उससे जुड़े थे और राधिका उन्हें अपनी आप बीती और दुखड़ा सुना रही थी। राधिका जितनी खीजी हुई और परेशान लग रही थी, अहाना उतनी ही शांत थी। अक्षय जी भी ऐसे ही ख्याल रखते थे हमारा। इससे पता चलता है कि माधव जी तुमसे और अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करते हैं और तुम दोनों की कितनी परवाह करते हैं। उनकी यही केयर इस वक्त तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अभी तो तुम्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा, पर जैसे जैसे वक्त बीतेगी तुम्हें समझ आएगा कि माधव जी कुछ गलत नहीं कर रहे, वो तुम्हारे ही बारे में सोच रहे हैं। अपने अनुभव से बता रहे हैं तुम्हें, प्रेगनेंसी के दौरान एक औरत में बहुत से बदलाव लाते हैं, उसे बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, पर अगर उस वक्त पति का साथ और प्यार मिले तो वो वक्त खूबसूरत यादें बन जाती हैं। पति पत्नी से माता पिता बनने तक का ये सफ़र उनके रिश्ते को और मजबूत बना देता है। इसलिए तुम माधव जी से नाराज़ होने की जगह इन लम्हों को खुलकर जियो और महसूस करो उनके प्यार और परवाह को। अहाना बड़े ही प्यार और शांति से राधिका को समझा रही थी, जबकि अंजलि आंखें फाड़े और मुंह खोले हैरान परेशान से उन दोनों को देखे जा रही थी। तुम दोनों की बातें सुनकर तो मुझे लग रहा है कि मेरी ही किस्मत मुझे धोखा दे गई। तुम दोनों लक्की निकली जो ऐसे वक्त पर तुम्हारे हस्बैंड इतना ख्याल रख रहे हैं, पैम्पर कर रहे हैं, इतनी केयर कर रहे हैं तुम्हारी और बच्चे की। कार्तिक तो ऐसे नहीं थे, जब मैं प्रेग्नेंट थी तो इतनी भी केयर नहीं करते थे वो मेरी। उन्हें कुछ पता ही नहीं होता था, मेरी सास ही मेरा ध्यान रखती थी, पर कहती थी तो मना भी नहीं करते थे, जो लाने कहती लाकर देते, रात को पैरों और कमर की मालिश भी कर देते थे। तुम भी जीजू से ये सब करवाना और अपनी प्रेगनेंसी पीरियड एंजॉय करो। सच में यार, जब पति ऐसे सेवा करता है ना तो अंदर से बड़ी अच्छी और हैप्पी वाली फीलिंग आ रही होती है। यही तो हम समझा रहे हैं इसे। माधव जी के जिस केयर को वो ओवर समझ रही है वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। शायद तुम्हारे टाइम पर कार्तिक इसलिए इतना ज़्यादा केयरिंग और प्रोटेक्टिव नहीं था क्योंकि उसके लिए सब नॉर्मल था, जबकि हम एक बार अपने बच्चे को खो चुके थे, इसलिए अक्षय जी ज़्यादा अलर्ट रहते थे हमें और हमारे बच्चे को लेकर। फिक्रमंद थे, हमें प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसलिए बहुत ख्याल रखते थे हमारा और हमें खुश भी रखते थे। माधव जी की ज़िंदगी में भी ये खुशी एक लंबे इंतज़ार के बाद आई है। उन्होंने भी अपने पहले बच्चे को खोया है और राधिका का पहले मिसकैरेज हो चुका है, इसलिए वो इस बार कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। वो बस अपनी बीवी और बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी चिंता और परवाह समझती हूँ मैं, पर अभी 7 महीने बाकी हैं। अगर ऐसे हर बात पर टोकते रहे, पाबंदियाँ लगाते रहे तो मैं कैसे सब संभाल पाऊँगी? तुम विश्वास करोगी, भारी नहीं उठाने के नाम पर उन्होंने मुझे एक सामान नहीं उठाने दिया। आज खुद अंदर से बाहर चक्कर पर चक्कर लगाते रहे। मैं किचन में सामान सेट करने लगी तो वहाँ से भी डांट कर और धमकी देकर भगा दिया। वो वहाँ काम कर रहे होंगे और मैं यहाँ बैठी हूँ, जबकि मैं बिल्कुल भी नहीं थकी हूँ। मुझे कितना अजीब लग रहा था। मैं समझा रही थी उन्हें कि मैं ठीक हूँ, नहीं थकी हूँ, रोज़मर्रा के काम कर सकती हूँ, पर उन्होंने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे धमकी देकर ज़बरदस्ती यहाँ कमरे में भेज दिया। मैं पहले जैसे ही नॉर्मली रहना चाहती हूँ, पर आप मुझ पर पाबंदियाँ लगा रहे हैं, बस इसलिए मैं थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी। राधिका, बात बर्डन बनने की नहीं, प्यार और फिक्र की है। देखो, वो बस कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। अभी शुरू में तुम्हें ये सब अजीब लग रहा होगा। किसी भी बदलाव को अपनाने में टाइम तो लगता ही है, पर धीरे धीरे तुम्हें इन सब की भी आदत हो जाएगी। फिर तुम्हें माधव जी की कहीं इन छोटी छोटी बातों और चीज़ों से अलग ही खुशी का महसूस होगा। उनकी ये छोटी छोटी कोशिशें तुम्हें एहसास करवाएंगी कि तुम और तुम्हारा बच्चा कितनी अहमियत रखते हो उनके लिए। और सच बता रहे हैं, इस दौरान पति की केयर एक अलग सा सुकून पहुंचाती है। सारी तकलीफें उसके आगे फीकी पड़ जाती हैं और इन्हीं से रिश्ता और भी मजबूत होता है। पति पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग और प्यार बढ़ता है, उनका इमोशनल बॉन्ड स्ट्रांग होता है और साथ ही बच्चे से भी जुड़ाव का एहसास होता है। राधिका आगे कुछ बोल न सकी। इतने में किसी की आहट हुई तो उसने झट से फ़ोन काट दिया और निगाहें दरवाजे की ओर घुमाई। ठीक उसी वक्त माधव ने भी नज़रें उसकी ओर उठाईं और दोनों की निगाहें एक दूसरे की निगाहों से उलझ गईं। माधव को अचानक अपने सामने देखकर राधिका हड़बड़ाते हुए ठीक से बैठ गई। कर ली अपने सहेलियों से मेरी शिकायत, या कोई चुगली लगानी बाकी है अभी? माधव ने व्यंग्य भरी मुस्कान लबों पर बिखेरते हुए तंज कसा। राधिका की आंखों की पुतलियां फैल गईं। अगले ही पल उसने सकपकाते हुए उस पर से निगाहें फेर लीं।
मैं कोई चुगली नहीं लगा रही थी आपकी, पर शिकायत तो कर रही थी। मैंने खुद अपने कानों से सुना है। माधव धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। चेहरे पर अब गंभीर भाव मौजूद थे। उसकी बात सुनकर पल भर को राधिका के चेहरे के भाव कुछ बिगड़े, कुछ घबराई भी, फिर अपनी घबराहट को गुस्से के पीछे छुपा लिया और तुनकते हुए बोली, तो आपकी गलती है, क्यों सुनी आपने मेरी बात? मालूम नहीं आपको ऐसे छुपकर किसी दूसरे की बात सुनना बैड मैनर्स में आता है? किसी और की नहीं, अपनी बीवी की बात सुनी है मैंने, और बात हो भी मेरे बारे में रही थी तो इसमें तो मैनर्स की कोई बात ही नहीं। माधव राधिका के पास ही बैठ चुका था और अब भी चेहरे पर गंभीर भाव लिए उसे ही देख रहा था। राधिका को अब और कुछ सूझा नहीं तो मुंह फुलाए उसे घूरने लगी। आप लड़िए मत मुझसे, मेरा मूड नहीं है अभी आपसे लड़ने का। तो किस चीज का मूड है आपका? अपनी दोस्तों से मेरी शिकायतें लगाने का? माधव ने तीखी निगाहों से उसे घूरते हुए अपने होठों को व्यंग्य से मोड़ा और उसकी बात सुनकर राधिका चिढ़ गई। आप क्यों आए हैं यहाँ? रेस्टोरेंट नहीं जाना आज आपको? माधव के चेहरे के भाव फिर बदले और उसने गंभीर निगाहों से उसे देखते मायूसी भरे स्वर में जवाब दिया, सोचा तो था कि आज का दिन अपनी बीवी और बच्चे के साथ बिताऊंगा, पर अब लगता है कि गलत ही सोच लिया। आपको तो मुझे रुकते देखकर खुशी ही नहीं हुई, इनफैक्ट मुझे देखकर तो आप चिढ़ रही हैं। तो रेस्टोरेंट चले जाना चाहिए मुझे। माधव फीका सा मुस्कुराया और जैसे ही उठने लगा, राधिका ने हड़बड़ाहट में उसकी हथेली को अपनी दोनों हथेलियों से थाम लिया और बेचैनी भरी नजरों से उसे देखते व्याकुलता भरे स्वर में बोली, नहीं रुकिए ना, ऐसी बात नहीं है। तो कैसी बात नहीं है राधिका? माधव ने एकाएक उसकी ओर पलटते हुए सवाल किया। पहले तो राधिका को कुछ समझ ही नहीं आया कि क्या कहे, फिर उसने अपनी निगाहों को झुका लिया और उसके मायूसी भरे शब्द माधव के कानों से टकराए, मैं बस थोड़ा सा नाराज थी आपसे, आपने मुझे एक भी सामान नहीं उठाने दिया, जबकि आप जानते थे कि उस थैले में जो प्लास्टिक का सामान था वो बिल्कुल भी भारी नहीं था। उसके बाद आपने मुझे फ्रूट्स की थैली थमाकर मेरा मजाक उड़ाया, हंस रहे थे आप मुझ पर, फिर मैं किचन में सामान सेट कर रही थी तो वहां आकर भी आपने मुझे डांटा, मुझ पर गुस्सा किया। मैं कह रही थी कि मैं नहीं थकी हूँ, कर सकती हूँ वो काम, पर आपने मेरी एक नहीं सुनी और मुझे धमकी देकर जबरदस्ती यहाँ कमरे में भेज दिया। मैं पहले जैसे ही नॉर्मली रहना चाहती हूँ, पर आप मुझ पर पाबंदियां लगा रहे हैं, बस इसलिए मैं थोड़ा सा नाराज हो गई थी।
माधव खामोशी से उसके उदास चेहरे को देखता रहा, फिर उसके पास ही बैठ गया और उसकी हथेलियों को अपनी हथेलियों के बीच थाम लिया। राधिका, अब कुछ भी पहले जैसा नहीं है, आप प्रेग्नेंट हैं, आपके अंदर हमारा बच्चा पल रहा है जिसे बहुत केयर की जरूरत है। एक बच्चे को 9 महीने अपने अंदर रखना, उसे जन्म देना आसान नहीं होता। आपको बहुत कुछ सहना होगा, बहुत ख्याल रखना होगा, बहुत सी तकलीफों से गुजरना होगा, और इन सब में सबसे खराब बात यह है कि बच्चा हम दोनों का है, पर सब कुछ आपको अकेले ही फेस करना होगा, और मैं बस इमोशनली आपको सपोर्ट कर सकता हूँ, आपकी तकलीफ़ों को कम करने की, आपका सहारा बनने की कोशिश कर सकता हूँ, आप दोनों का अपने लेवल पर ध्यान रख सकता हूँ ताकि आप दोनों ठीक रहें। माधव बोलते बोलते रुका तो राधिका नज़रें उठाकर उसे देखने लगी। माधव ने अब उसकी निगाहों में झांकते हुए आगे कहना शुरू किया, राधिका आप मुझसे जिन बातों के लिए नाराज हैं, अगर ज़रा गौर करेंगी तो आपको समझ आएगा कि मैंने जो किया उस सब के पीछे वजह थी, और मैंने सब सिर्फ आपके और हमारे बच्चे के लिए किया है। राधिका की उन बड़ी बड़ी आंखों में कुछ सवाल झलकने लगे थे, जिन्हें समझते हुए माधव ने आगे कहना शुरू किया, आप सामान लेकर अंदर आती, भले वो इतना भरा नहीं था पर था ज़्यादा, अगर उसके वजह से गिर जाती तो क्या होता? किचन में आप ऊंचे ऊंचे कैबिनेट में सामान रख रही थी, अगर तब कुछ आप पर गिर जाता, आपको चोट लग जाती या बच्चे को कोई नुकसान पहुंचता, तब क्या करता मैं? बाहर में आपका मजाक नहीं उड़ा रहा था, आप बच्चों जैसे मुंह फुलाए खड़ी थी, बस इसीलिए मुस्कुरा रहा था। मैं ये नहीं कह रहा कि आप 24 घंटे बेड पर लेट कर आराम ही करें, सब काम धंधे छोड़ दें, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि कुछ भी करने से पहले ये ध्यान रखें कि आप प्रेग्नेंट हैं, अगर मैं या मम्मी आपको कोई काम करने से मना करें तो समझें इस बात को कि हम कुछ भी बेवजह नहीं कहेंगे, हमें आपकी और बच्चे की फ़िक्र है और आपको भी होनी चाहिए। आपकी पिछली प्रेगनेंसी में आप कैसे रहती थी मुझे नहीं पता और ना ही मुझे पता करना है, मैं बस इतना जानता हूँ कि आप मेरी पत्नी हैं और आपके अंदर हमारा बच्चा पल रहा है, और मैं आप दोनों में से किसी पर आंच नहीं आने देना चाहता, किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। आप पहले जैसे रहना चाहती हैं पर अब ये मुमकिन नहीं है, वक्त और हालात के साथ आपको भी बदलना होगा। आपके साथ हमारे बच्चे की ज़िंदगी जुड़ी है राधिका, आपको अलर्ट रहना होगा, अपना ख्याल रखना होगा, अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करने होंगे। आप पहले जैसे बेफिक्र नहीं रह सकती, सारा सारा दिन काम में नहीं निकाल सकती, आपको बीच बीच में आराम भी करना होगा, खाते पीते भी रहना होगा, और कुछ भी काम करने से पहले ये देखने की ज़रूरत है कि उससे किसी भी तरह से आपको या हमारे बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं पहुँचेगा। समझ रही हैं ना आप मेरी बात?
राधिका सारे वक्त खामोशी से उसे देखते हुए उसकी बातें बड़े ही गौर से सुनती रही। समझ आया उसे कि पिछली बार उसे कोई एक्स्ट्रा अटेंशन नहीं मिला था, इसलिए इस बार जब मिला तो उसे अजीब सा महसूस हुआ। समझ आया कि अब उससे और इस बच्चे से बहुतों की उम्मीदें जुड़ी हैं, सबको उसकी चिंता है, परवाह है। माधव भी जो कर रहा है सिर्फ उसके और उनके बच्चे के लिए कर रहा है, क्योंकि वो उनसे प्यार करता है, उसे उनकी फिक्र है। राधिका कुछ पल माधव को एकटक देखते हुए यही सब सोचती रही, फिर खोए स्वर में सवाल किया, क्या सारे पति ऐसे ही होते हैं? बीवी प्रेग्नेंट हो तो इतनी ही परवाह करते हैं उसकी? सबका तो मुझे नहीं पता राधिका, अगर प्यार करते होंगे तो परवाह भी करते होंगे, बस दिखाने का तरीका शायद अलग हो और इंसान के हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकता है। पर मैं आपसे और हमारे बच्चे से बहुत मोहब्बत करता हूँ, इन खुशियों के लिए बहुत लंबा इंतजार किया है मैंने, और अब जब फाइनली भगवान ने मेरे हिस्से की खुशियाँ आपके और इस बच्चे के रूप में मुझे लौटाई हैं, तो मैं उसे अपने पास सहेज कर रखना चाहता हूँ, हर कदम पर आपका सहारा बनकर आपका साथ देना चाहता हूँ, ताकि कल को जब मेरा बच्चा मुझे पापा कहकर पुकारे तो मुझे एहसास हो कि मैंने उसके पिता होने का फर्ज भी निभाया है। अगर आप उसे जन्म देकर माँ बनी हैं तो उस वक्त आप दोनों का ख्याल रखकर, आपको संभालकर मैंने भी पिता होने का हक कमाया है। आपकी सोच बाकी मर्दों से बहुत अलग है और बहुत अच्छे हैं आप। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो मुझे जीवन साथी के रूप में आप मिले। राधिका ने झिलमिलाती आंखों से उसे देखा और मुस्कुराते हुए उसके सीने से लग गई। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो अभी बुराई किसकी कर रही थी आप अपनी फ्रेंड से? माधव ने आंखें चढ़ाते हुए नाराजगी से कहा। राधिका ने उसके सीने से सर बाहर निकालकर उसे देखा और मासूम सी सूरत बना ली। मैं बुराई नहीं कर रही थी आपकी। माधव ने आंखें छोटी छोटी करके उसे घूरा तो राधिका ने अपनी निगाहों को झुका लिया। सॉरी, मैंने बहुत इम्पल्सिवली रिएक्ट किया, आपके एक्शंस के पीछे की वजह जानने की कोशिश किए बिना ही आपको गलत कह दिया, बच्चों जैसे नाराज हो गई। आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, आपकी हर बात मानूंगी और अपना और हमारे बच्चे का ध्यान भी रखूंगी, और भूलकर भी ऐसा कोई काम नहीं करूंगी जिससे हमारे बच्चे को किसी तरह का कोई नुकसान पहुंचने की संभावना हो। पर आप मुझे रोजमर्रा के छोटे मोटे काम करने से नहीं रोकेंगे, वो तो मैं वैसे भी नहीं रोकता। मम्मी कहती है इस वक्त जितना हाथ पैर चलता रहे डिलीवरी में उतनी कम तकलीफ होती है, इसलिए आप सब काम कर सकती हैं, बस ध्यान रखकर कि उससे आपको या हमारे बच्चे को कोई नुकसान न पहुंचे, समझी? राधिका ने हामी भरी और अपना चेहरा वापस उसके सीने में छुपा लिया।